आचार्य रचित दौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। दसवीं पुस्तक जो चतुर्थ वेदना खंड, उसमें वेदना अनुयोग द्वार में अभी हम पृष्ठ संख्या 141 पर आ गए हैं। एक समय प्रबद्ध की जो बात है उसमें जो निषेक रचना होती है उसकी यहाँ बात चल रही है। हम 140 के अंत से पढ़ते नीचे के चार लाइन, ये भागार की बात चल रही थी अवहार काल की, तो यहाँ नीचे पढ़ते हैं, नाना गुणहानी शलाकाओं से भाजित। हमने नाना गुणहानी शलाका 6 मान ली है, उससे भाजित एक कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि का विरलन करके, अन्योन्य अभ्यस्त राशि है 64, क्योंकि 6 बार 2 लिखकर आपस में गुणा करना, एक कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि होती है 63, 63 को 6 का भाग देना और उस राशि का विरलन करना, और उसमें एक कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि को ही समखंड कर देने पर, एक ही बात है ना, 63 को 6 से भाग दो, विरलन करो और उसके ऊपर फिर 63 दे दो, तो जितने अन्योन्य अभ्यस्त राशि आएगी वही एक एक खंड के ऊपर आ जाएगा। समखंड कर देने पर प्रत्येक एक के प्रति नाना गुणहानियों की शलाकाओं का प्रमाण प्राप्त होता है, यानी 6। उनमें से एक अंक के प्रति प्राप्त राशि से, यानी 6 संख्या से डेढ़ गुणहानि को गुणित करने पर डेढ़ कर्म स्थिति उत्पन्न होती है। एक कर्म स्थिति हमने कितनी मान ली है, एक गुणहानि गुना नाना गुणहानि, तो 48 हमने मानी थी। 6 नाना गुणहानि है और एक गुणहानि 8 की है, 48 हो जाती है ना। और यहाँ डेढ़ गुणहानि से गुणित करेंगे तो क्या होगा, डेढ़ कर्म स्थिति होगी, तो ये 72 आई संख्या यहाँ पर। नाना गुणहानि गुणा एक गुणहानि वो कर्म स्थिति आती है, दैट इज इक्वल टू कर्म स्थिति। अब जितने गुणहानियों से गुणा करेंगे उतनी कर्म स्थितियां आएगी, तो डेढ़ गुणहानि से गुणित करेंगे तो डेढ़ कर्म स्थिति है। अब कहते हैं 2 विरलन अंकों के प्रति प्राप्त राशि से, एक विरलन के प्रति 6 थे, 2 विरलन के प्रति 12 हो जाते हैं, प्राप्त राशि से डेढ़ गुणहानि को गुणित करने पर 3 कर्म स्थितियां उत्पन्न होती हैं। 12 × 12 = 144। इस प्रकार जाकर जघन्य परिता संख्यात के 2/3 भाग मात्र विरलन अंकों के प्रति प्राप्त राशि से डेढ़ गुणहानि को गुणित करने पर असंख्यात कर्म स्थितियां उत्पन्न होती है। इस प्रकार साधुजन के संदेह रहित हो जाने तक ले जाना चाहिए। इसलिए अंतिम निषेक का भागहार अंगुल का असंख्यात्वा भाग है, यह सिद्ध होता है। ये भागहार कितना है वो निकालने के लिए तरीका है। अवहार प्ररूपणा समाप्त हुई। जिस प्रकार अवहार काल है उसी प्रकार भागा भाग है, क्योंकि सब निषेक सब द्रव्य के असंख्यातवे भाग मात्र है। भागा भाग प्ररूपणा समाप्त हुई। समय प्रबद्ध तो अनंत का है और उसका प्रत्येक निषेक जो है उसका असंख्यातवा भाग है। क्यों? कर्मस्थिति के कर्मस्थिति कितने में होती है? सागरों में होगी। तो उसमें समय कितने हैं? सागर में असंख्यात ही समय होते हैं, है ना? तो ये असंख्यात निषेक हो जाएगा तो असंख्यातवा भाग हो जाएगा उसका। भले उसकी संख्या अनंत हो एक निषेक में, परंतु वो पूरा जो द्रव्य है एक समय प्रबद्ध का उसका असंख्यातवा भाग ही है। अब मेरे ख्याल से ये अल्प बहुत वो बता रहे हैं, क्योंकि भागा भाग के बाद अल्प बहुत वो होगा। अंतिम निषेक हमने जो नौ मान लिया है सबसे स्तोक है। प्रथम निषेक जो 512 हमने माना है वो उससे असंख्यात गुणा है। अंतिम निषेक से पहला निषेक असंख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? गुणकार कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि है, तो अन्योन्य अभ्यस्त राशि तो 64 थी, तो कुछ कम ने हमने 512 बटे 9 देखा था, उससे उसको गुणा करेंगे तो उसकी संख्या 512 आती है। उससे अप्रथम अचरम द्रव्य असंख्यात गुणा है। अप्रथम जो प्रथम नहीं है वो अप्रथम, और अचरम यानी चरम नहीं है, दोनों को छोड़कर बीच वाला। गुणकार क्या है? तो कहते एक और एक के असंख्यातवे भाग से हीन डेढ़ गुणहानी गुणकार है। यहाँ वो लिखा है 5779 बटे 512, ये उसका गुणकार बताया। इससे पहला और वो आखिर वाला छोड़कर बीच वाले की संख्या हो जाएगी इतनी, यानी 512 से वो कितने गुणा है वो निकाला है। 512 और 9 6300 में से माइनस करना तो ये संख्या आ जाएगी। अप्रथम अचरम है पहला 512 को छोड़ो और चरम यानी 9 को छोड़ो, बीच वाले दूसरे से लेकर द्विचरम तक के सभी की टोटल 480 से लेकर 10 तक के, हाँ ये अपना वो चार देखना 121 है, हाँ 121 पृष्ठ पर देखो। पहला है 512 लेफ्ट साइड में नीचे का, और राइट साइड में ऊपर का जो अंतिम गुणहानि में वो 9 है। इनके अलावा जो बीच में जो सारे जो है ऐसा हम करेंगे ना, 6300 माइनस 512 प्लस 9, 512 प्लस 9 आते हैं 521, तो 63 में से 521 गए, 5779 आते हैं। तो 512 से ये संख्या कितने गुना है तो उसको भाग देंगे तो वो कितने गुणा है वो संख्या निकलेगी, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट बता दिया 5779 बटे 512। वो कितनी है वो भी बता दिया 11.147 बटे 512। ये कुछ कम लिखा ना उसमें, डेढ़ गुणहानी से कुछ कम, डेढ़ गुणहानी 12 की है उसमें से कुछ कम है। इसका कारण यह है कि प्रथम निषेक के गुणकार में यदि एक अंक की हानि प्राप्त हानि पाई जाती है तो अंतिम निषेक से अधिक प्रथम निषेक के गुणकार में कितने अंकों की हानि पाई जाएगी? क्या त्रैराशिक क्या लिखा? 512 के गुणकार में यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो 512 प्लस 9 यानी 521 के गुणकार में कितनी हानि पाई जाएगी? इस प्रकार यानी ये त्रैराशिक हुआ। हाँ, प्रमाण राशि से इच्छा राशि को भाजित करने पर एक का असंख्यातवा भाग अधिक एक अंक की हानि देखी जाती है। ये त्रैराशिक समझ में है? 512 में एक तो 521 में कितने? 9 बढ़ाए ना हमने उसमें, तो 521 बटे 512 इतना आएगा। तो ये कितना ज्यादा है? तो इसको हम पूर्णांक में करेंगे, 512 का पूरा भाग जाएगा, 9 बचेंगे, एक पूर्णांक 9, 512 अंश। इतनी हानि वो 12 में से घटाएंगे फिर, आगे पृष्ठ पर 142 पृष्ठ पर आए हैं, इसको इसमें से घटा देने पर, पहले हमने वो एग्जैक्ट फिगर निकाली थी 6300 के लिए, 12 पूर्णांक 39 बटे 128, उसमें से अभी जो प्राप्त राशि है वो उसको घटा देना, उस पर गुणकार आता है, उसका प्रमाण 6300 बटे 512, उसमें से अभी जो प्राप्त राशि हुई है 521 बटे 512, दैट इज इक्वल टू 5779 बटे 512। इससे प्रथम निषेक को गुणित करने पर इतना होता है। 512 से कितने गुणा है ये पूछा था, अल्प बहुतो बता रहे हैं, पहले अंतिम निषेक 9 है, उससे असंख्यात गुणा पहला निषेक है, और उससे पहले निषेक से असंख्यात गुणा बीच वाले सारे निषेक हैं। अप्रथम अचरम द्रव्य से अप्रथम द्रव्य विशेष अधिक है। अकेला अप्रथम कहने पर जो पहला नहीं है, द्वितीय से लेकर अंतिम तक, तो अभी जो हमने 5779 देखे उसमें और 9 मिला देना तो वो विशेष अधिक हो जाएंगे, क्योंकि उसमें अंतिम निषेक प्रविष्ट है। 5779 प्लस 9 इज इक्वल टू 5788, उससे अचरम द्रव्य विशेष है। अभी अचरम में क्या करना, चरम निकालो और वो पहला वाला मिला दो। बीच में हमने 5779 देखा था, उसमें 512 मिला दो, क्योंकि उसमें चरम निषेक से रहित प्रथम निषेक प्रविष्ट है। 5788 में 512 मिला देना और 9 घटा देना, ये 6291 आते हैं। उससे सब स्थितियों का द्रव्य विशेष अधिक है, यानी पूरा ही टोटल 6300 है वो उससे विशेष अधिक है, क्योंकि उसमें अंतिम निषेक प्रविष्ट है, यानी 6291 अधिक 9 वो 6300 आते हैं। इस प्रकार अल्प बहुत्व प्ररूपणा समाप्त हुई। यतः हाँ, 141 पेज पर क्या शंका आपकी? कहाँ कहाँ पर? 141 में लास्ट पैराग्राफ। हाँ, गुणकार कुछ कम अन्य अभ्यस्त राशि है। हाँ, वो ऐसे ही बता दिया उन्होंने, कुछ कम, हाँ हाँ एजम्पशन करके बताया। हाँ, अभी हम यहाँ आते हैं। 142 पृष्ठ पर। आवाज बहुत कम लग रही है। यतः एक समय प्रबद्ध की रचना इस प्रकार की होती है, अतएव ये कारण बताया, एक समय प्रबद्ध की रचना कैसी होती है वो सब बताया, ये ऐसी होती है इसलिए, अतएव इसलिए कर्मस्थिति के प्रथम समय प्रबद्ध के संचय का भागार अंगुल का असंख्यात भाग है यह सिद्ध होता है। कर्मस्थिति के पहले समय का संचय कहा, निषेक नहीं कहा, कर्मस्थिति के पहले समय में बंधे हुए पूरे, क्योंकि निषेक रचना हुई है कितने की, 63 से की हुई है, तो उसका भागहार बताया। कर्मस्थिति के प्रथम समय प्रबद्ध के संचय का भागहार अंगुल का असंख्यातवा भाग है यह सिद्ध होता है। अब प्रावृत में, प्रावृत यानी ये जो इस संबंधी जो शास्त्र है उसमें अग्रस्थिति प्राप्त द्रव्य का कथन करते समय, ये पहले हमने अग्रस्थिति और उसकी बात देखी थी, तो अग्रस्थिति प्राप्त यानी कौन सा, भूल गए ना, बहुत ही हम 113 प्रश्न निकाल। उसमें नीचे से पांचवी छठी और सातवीं लाइन में आना, उनमें मिला ना, जो समय प्रबद्ध कर्मस्थिति काल तक रहकर निर्जीर्ण होने वाला है उसके उदय स्थिति को प्राप्त हुए पुद्गल स्कंधों की अग्रस्थिति प्राप्त संज्ञा है। कर्मस्थिति के पहले समय में जो समय प्रबद्ध उतने काल तक रहा ना, अभी उसके अंतिम निषेक है, उसमें जो कुछ उत्कर्षण करके जो कुछ वहाँ मैक्सिमम द्रव्य आया है उसका, तो वहाँ जो उसको उदय को आएगा वो अंतिम समय में, तब उसको कहेंगे अग्रस्थिति प्राप्त द्रव्य। अब इसकी क्या बात कर रहे हो देखेंगे आप अपने पेज नंबर 142। प्रावृत में अग्रस्थिति प्राप्त द्रव्य का कथन करते समय कर्मस्थिति में निक्षिप्त हुए समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य का काल क्या कहते हैं, कर्मस्थिति में निक्षिप्त, कर्मस्थिति जो मैक्सिमम हमने देखी थी उसमें निक्षिप्त यानी उसमें जो डाला हुआ, निक्षिप्त हुए समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य का काल, उस सांतर वेदक काल और निरंतर वेदक काल के रूप में दो प्रकार से जाता हुआ बताया। ये जो समय प्रबद्ध का द्रव्य निक्षिप्त हुआ है कर्मस्थिति में, तो उसका सांतर वेदक काल और निरंतर वेदक काल ऐसे दो प्रकार बताए, उनमें से बंद समय से लेकर एक आवली के पश्चात प्रत्येक समय प्रबद्ध अपवर्तित होकर नियम से वेदा जाता है। देखो जब बंद होता है तो हम देखते कि आमाधा काल और फिर उसकी वो निषेक रचना हो जाती है सारी, जैसे 70 कोड़ा कोड़ी होगा तो 7000 वर्ष उसकी आबादा काल है, परंतु बंद के बाद एक आवली के पश्चात अपवर्तित होना यानी अपकर्षण होना, उदीर्णा होकर उसका उदय हो सकता है, उसको यहाँ बताया है। अपवर्तित होकर नियम से वेदा जाता है जो कि उसके आगे पल्योपम के असंख्यात भाग मात्र काल तक नियम से निरंतर वेदा जाता है। ये जो अपवर्तित होकर वेदा जाएगा तो पल्ले के असंख्यात भाग तक तो निरंतर वेदा जाएगा नहीं, निरंतर उसका उदय होगा। विशिष्ट समय प्रबद्ध की बात कर रहे हैं, उदय होगा ही नहीं उसकी बात नहीं है, उन एक समय प्रबद्ध के परमाणुओं की बात चल रही है, इसको निरंतर वेदक काल कहते हैं। इसके आगे के समय में अवेदक काल आता है जो जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट रूप से पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र होता है। कि पहले विशिष्ट समय में वो बांधा था उसकी बात है। सत्ता में तो सभी अलग अलग समयों में बंधे हुए पड़े रहते हैं, और उदय तो किसी ना किसी का तो चलेगा ही। जैसे ज्ञानावरण है, उदय तो निरंतर चलेगा, कब तक? हाँ, दसवें तक ज्ञानावरण का, बारहवें तक, बारहवें के अंत समय तक। परंतु यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है, विशिष्ट समय में बंधे हुए की बात है। जिसके पहले उदीर्णाय ने अपवर्तन होकर उदय में आए, तो निरंतर पल्ले के असंख्यात भाग काल तक तो निरंतर उदय है। उसके बाद उसमें अंतर हो सकता है मिनिमम एक समय और उत्कृष्ट, फिर पल्ले का असंख्यात भाग, उसको अवेदक काल कहेंगे। यानी अर्लीस्ट कब होता है, तो बंधावली के बाद ही आएगा, तो नियम से आएगा। नहीं नहीं, एक बंधा के बाद, एक आवली के बाद अपकर्षण होकर उदय में आ सकता है। इसीलिए अपवर्तित होकर शब्द डाला ना उन्होंने। विशिष्ट समय प्रबद्ध की बात है, उस आबादा काल में अन्य समय में बंधे हुए का तो उदय चल ही रहा है। सात हजार वर्ष उदय, वो उदय की आबादा है। उदीर्णा की आबादा तो आवली हो जाएगी मिनिमम। अर्लीस्ट उदय, उदीर्णा होकर अर्लीस्ट उदय कब हो सकता है, तो बंधे के बाद, एक आवली के बाद आ सकते हैं। उसकी बात पॉसिबिलिटीज है, नियम यानी वो नियम है आवली के लिए। बंधावली के पहले नहीं होगा, उसके पश्चात ही होगा। और यदि ऐसा होता है तो निरंतर उसका काल होगा, पल्ले के असंख्यात भाग तक तो निरंतर उदय काल चलेगा। उसके बाद उसमें गैप पड़ेगी। वही बात बता रहे कि आगे के समय में अवेदक काल आता है, जो जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट रूप से पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र होता है। तत्पश्चात एक समय से लेकर उत्कृष्ट रूप से पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र काल तक नियम से निरंतर वेदक काल होता है। इस प्रकार पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र वेदक काल और पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र अवेदक काल से कर्मस्थिति का अंतिम समय प्राप्त होने तक समय प्रबद्ध जाता है। समय प्रबद्ध की निषेक रचना तो जो हमने निरंतर वाली देखी थी वैसी होती है, परंतु उसमें से जो अपवर्तन होकर नीचे माल आता है, तो उसमें निरंतर वेदक काल, फिर अवेदक काल, निरंतर वेदक काल, अवेदक काल, ऐसे उसमें हो सकता है। साता असाता तो अल्टरनेट उसमें उदय होता है। नहीं नहीं, उसकी बात यहाँ अभी नहीं लगाना है। अभी हम ज्ञानावरण की और मोहिनी की इतनी बात देखी हमने, इनका तो सभी प्रकृतियों का उदय चल रहा है। वो जो वेदनीय है वो प्रतिपक्ष वाली है। यहाँ हम ये जो ज्ञानावरण दर्शनावरण वगैरह जो है वो तो अप्रतिपक्ष वाली है, ध्रुवबंदी भी है और वो निरंतर उदय वाली भी है। हाँ, अपकर्षण हो सकता है। हाँ, जो कुछ फेरफार होना है, हाँ, तो बंधावली के बाद जो द्वितीयावली होती है वहीं से उसमें जो कुछ अंदर वेरिएशन से वो शुरू हो सकते हैं। एक आवली तक उसमें कुछ नहीं होगा। हाँ, ऐसा नियम नहीं है कि होगा ही, होने का नियम नहीं है, परंतु होगा तो कब होगा, तो बंधावली के पश्चात ही होगा, ये नियम है। पर्टिकुलर समय प्रबद्ध की बात है, नहीं तो ज्ञानावरण का उदय तो मिटेगा ही नहीं कभी। ज्ञानावरण का अवैध काल चल रहा है ऐसा कहेंगे तो वहां तो केवल ज्ञान हो जाएगा। अब चारित्र मोहिनी की बात करें, हमने अभी तक मोहिनी की और मिथ्यात्व की और ज्ञानावरण की देखी थी। चारित्र मोहिनी की क्षपणा में जो मूल गाथा आई है उसकी चार भाष्य गाथाएं हैं। उनमें से तीसरी वाच्यगाथा में भी इसी अर्थ की प्ररूपणा की गई है, यथा असामान्य स्थितियां एक है, दो है अथवा तीन है। इस प्रकार उत्कृष्ट रूप से पल्लोपम के असंख्यात विभाग तक निरंतर जाती है। असामान्य स्थितियां वो तो निरंतर वेदक और निरंतर अवेदक ऐसे दो प्रकार के बताए ना उन्होंने। सामान्य से जो तो निरंतर उनकी स्थितियां बनी है पहले निषेक से अंतिम निषेक तक। असामान्य में क्या होता है, यानी कोई विशेष बात होती है तो निरंतर वेदक और निरंतर अवेदक एक दो तीन ऐसे मैक्सिमम पल्ले के असंख्यात विभाग तक भी हो सकता है। किसी की तो एक समय तक वो वेदक वाली, बीच में एक समय का ही अंतर पड़े फिर दूसरे समय में वहां वेदक हो जावे। अब शंका, चतुर्थ गाथा में भी क्षपक की सामान्य स्थितियों का अंतर उत्कृष्ट रूप से आवली का असंख्यात भाग कहा गया है। इसलिए कर्मस्थिति के भीतर बांधे गए समय प्रबद्धों का निरंतर अवस्था न होने से भागार की प्ररूपणा घटित नहीं होती होगी। ये जो कुछ चार गाथाएं उन्होंने बताई है, तभी शंकाकार स्वयं आचार्य है ना, तो वो स्वयं ही प्रश्न उठा रहे हैं कि जो चतुर्थ गाथा में भी क्षपक, यानी वो तो क्षपक उपशमक वाला वो क्षपक नहीं लेना, यहाँ बंधे हुए कर्म स्थिति का वो तो निरंतर उसमें उदय होकर जो क्षपणा चल रही है उसकी बात चल रही है, उदय हो रहा है ना वहां पर। एक क्षपणा क्षपणा आली है ऊपर। अच्छा, क्षपणा की काल की बात है। क्षपणा वाली बात है। क्षपक चढ़ने की बात। चतुर्थ गाथा में भी क्षपक की सामान्य स्थितियों का अंतर उत्कृष्ट रूप से अवली का असंख्यात भाग का है। इसलिए शंकाकार की शंका है, कर्म स्थिति के भीतर बांधे गए समय प्रबद्धों का निरंतर अवस्थान न होने से, यानी वो कंटिन्यूस उसकी अवस्थान यानी उनका रहना, उनकी स्थितियां निरंतर नहीं होती है, निरंतर नहीं रहती है, इसलिए भागार की प्ररूपणा घटित नहीं होगी। जो एक एक निषेक के प्रति एक एक भागार बता रहे हैं ऐसी प्ररूपणा नहीं होगी, क्योंकि बीच बीच में गैप है। हाँ, मूल गाथा उसमें वो ये जो उन्होंने पहले रेफरेंस दिया ना 113 वाला, उसमें मूल गाथा होनी चाहिए। 113 पृष्ठ पर उन्होंने जो बताया है, देखो कषाय प्रावृत में स्थित्यंतिक नामक एक अर्थाधिकार है, उसमें अलग अलग जो है ना उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त, निषेक स्थिति प्राप्त, अद्धा निषेक स्थिति प्राप्त, उदय स्थिति प्राप्त द्रव्य जो है उसकी बात वहां की थी, और उसमें वो चार गाथाएं होनी चाहिए कषाय प्रावृत में। उसका समाधान करते हैं, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि उत्कर्षणा द्वारा संचित हुए द्रव्य का गुणित कर्मांशिक के अंत समय में भागहार कहा गया है। ये गुणित कर्मांशिक की यहाँ बात चल रही है। अब उसका द्रव्य उत्कर्षणा द्वारा कर्म स्थिति के अंतिम समय में यहाँ हम देख रहे हैं, हमें गुणित कर्मांशिक यानी जिस जीव की सत्ता में अधिक से अधिक द्रव्य है उसकी बात चल रही है यहाँ पर। वो उत्कर्षण के द्वारा उसका द्रव्य भी वहाँ अंतिम निषेक के साथ पड़ा हुआ है, तो अंतिम निषेक का एकदम भागहार कहा गया यहाँ पर। यदि यहाँ स्थिति के संबंध से प्रदेशों की भागहार प्ररूपणा की जाती तो यह दोष हो सकता था, यदि एक एक निषेक का भागहार कहते तो दोष होता, परंतु यहाँ डायरेक्ट अंतिम निषेक का भागहार बताया है, तो उत्कृष्ट अधिक से अधिक उत्कर्षणा होकर वहां कितना द्रव्य हो सकता है उसकी बात यहां बताते हैं, तो उसका भागार कहने में कोई दोष नहीं है। क्या कहा ये फिर वाक्यपति, यहां यदि यानी वो तो प्रसंग बताते हैं, इन केस स्थिति के संबंध से प्रदेशों की भागार प्रवृत्ति, स्थिति का संबंध यानी प्रत्येक निषेक निषेक के प्रति अगर भागार बताते तो यह दोष हो सकता था क्या, कि क्योंकि बीच बीच में गैप है तो आप भागार कैसे कंटिन्यूस बता सकेंगे। किंतु यहाँ स्थिति का नियम नहीं है, इस कारण निरंतर भागार की प्ररूपणा सांतर व निरंतर वेदक काल के साथ विरोध को नहीं प्राप्त होती। शंका, उत्कर्षण द्वारा उपरिम स्थितियों को प्राप्त हुए एक समय प्रबद्ध के प्रदेशों का पल्योपम के असंख्यात वे भाग काल तक अपकर्षण और उदय का अभाव कैसे बन सकता है, क्या कि उत्कर्षण के द्वारा ऊपर चले गए हैं तो वहां पल्ले के असंख्यात वे भाग, उन्होंने बताया ना मिनिमम एक समय और अधिक से अधिक पल्ले का असंख्यात भाग, तो उतने काल तक उसमें अपकर्षण नहीं होगा, उदय भी नहीं होगा, ये कैसे जाना, क्योंकि वेदक काल का अभाव बताया ना वहां, अवेदक काल बताया, तो वहां उसका अपकर्षण होकर फिर उदय का होना संभव नहीं है, ऐसा आप क्यों कहते हो। हाँ, उदय कब हो सकता है, अपकर्षण होगा तो ही, वहां के निषेक के सारे परमाणु उत्कर्षण द्वारा ऊपर चले गए, उदय कब पॉसिबल था, जब दोबारा अपकर्षण होकर उदय में आवे तो। शंकाकार की यही शंका है, तो वहां अपकर्षण नहीं होता, उदय नहीं होता, ये आपने कैसे बताया। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि उपशमना आदि करणों के द्वारा उनका उतने काल तक अपकर्षण का अभाव और उदयाभाव मानने में कोई विरोध नहीं आता। एक बार उत्कर्षण होने के बाद हो सकता है कि उपशमना के द्वारा वो ऊपर ही रह गए, और तब तो उसका उतने काल तक फिर दोबारा नीचे आना घटित नहीं होगा। एक बार उत्कर्षण होकर ऊपर कुछ काल के लिए स्थित हो गए, वहीं उपशमना होगी उसकी, उपशमना वाला वही वो अंतरकरण वाला उपशम नहीं समझना यहाँ। हाँ, उसी का कि अपकर्षण नहीं हो ऐसी उपशमना उसमें हो सकती है, तो उतने काल तक वहां उसका उदय नहीं होगा, इसीलिए वहां अवेदक काल बताया। अब कहते अपकर्षणा द्वारा नष्ट हुआ द्रव्य बहुत स्तोक है, यह हमें गुणित कर्मांशिक वाला जीव लेना है। हाँ, तो सत्ता में ज्यादा रहना चाहिए। अपकर्षण के द्वारा क्या होता है, ऊपर के निषेकों का द्रव्य नीचे नीचे आता है और जल्दी खिर जाता है, उदय में आकर खिर जाता है। अब यहाँ वैसा जीव नहीं लेना है, अपकर्षण उसमें भी होगा पर ऐसे मिनिमम पॉसिबल होगा उसमें, इसलिए वह द्रव्य स्तोक है। इस कारण उसे गौण करके यहाँ सर्वप्रथम भागहार का कथन करते हैं। ये जो कुछ अपकर्षण के द्वारा व्यय हो जाएगा उसका निकल जाएगा उसको तो गौण करना, और सर्वसामान्य वहां भागहार का कथन करेंगे। कर्मस्थिति के प्रथम समय में बंध को प्राप्त हुए संचय के भागहार की प्ररूपणा की जा चुकी है। समय कर्मस्थिति जो इतनी है मैक्सिमम, उसके पहले समय में जो समय प्रबद्ध बांधा था उसका संचय कितना है, तो उसका संचय कितना है, कैसा उसका संचय का भागहार निकालेंगे हम, उतना संचय कितना है हम कहेंगे, तो जिस संख्या से सत्ता में पड़े हुए द्रव्य को भाग देने पर, सत्ता का द्रव्य लेना भी है, हाँ, वो टोटल उसका संख्या आएगी तो उसको कहेंगे उसका भागहार, संचय का भागहार। वो अभी तक हमने जो निकाला था यहाँ पर, ये संचय का भागहार निकाला ना हमने, देखो एक सौ इकतालीस पृष्ठ पर हमने देखा था पहले पैराग्राफ के अंत समय में, इसलिए अंतिम निषेक का भागहार अंगुल का असंख्यात्व भाग है यह सिद्ध होता है, यह हमने वहां देखा था। कर्मस्थिति के अंतिम समय में जितना वहां द्रव्य है उसका भागहार बताया था। अब कहते हैं, यहाँ आते हैं फिर अपने पुष्प पर। फिर दोबारा पढ़ती हूँ मैं दूसरी लाइन से। कर्म स्थिति के प्रथम समय में बंध को प्राप्त हुए संचय के भागार की प्ररूपना की जा चुकी है। यहाँ कर्म स्थिति के द्वितीय समय में हुए संचय का भागार कहते हैं। अब दूसरे समय में वहां जो संचय है उसका भागार कहेंगे। यथा कर्म स्थिति के प्रथम समय में संचित द्रव्य के भागार का विरलन करके सब द्रव्य को समखंड कर देने पर विरलन के प्रत्येक एक के प्रति अंतिम निषेक का प्रमाण प्राप्त होता है। यहाँ आपको अगर संदृष्टि देखनी है तो 142 पृष्ठ पर देखो, 142 पे नहीं, उसके पहले वाले 140 पर। ये 6300/9 यहाँ होता ना, नीचे से पांचवी लाइन, इसकी संदृष्टि 6300/9। यह भागहार अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है जो असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी मात्र है। ये इसके लिए रेफरेंस यहाँ दे सकते हैं। अब यहाँ क्या करना है, यथा के आगे क्या लिखा है देखो। कर्म स्थिति के प्रथम समय में संचित द्रव्य के भागहार का विरलन करके 6300/9 का विरलन करना है। सब द्रव्य को समखंड कर देने पर और उसमें 63 बार देना, तो प्रत्येक विरलन के प्रति कितना होगा, 9-9 आएंगे। 63 को भाग दिया 9 से और फिर उसमें 6300 बार दिए, 9 आ जाएगा। विरलन के प्रत्येक एक के प्रति अंतिम निषेक का प्रमाण प्राप्त होता है, ने 9 प्राप्त होते हैं। ये भागहार था 6300/9। फिर इस भागहार के अर्ध भाग का विरलन करके सब द्रव्य को समखंड कर देने पर विरलन के प्रत्येक एक के प्रति दो दो अंतिम निषेक प्राप्त होते हैं, यानी 18 हो जाएंगे। देखो 63/9 यानी 6300/9 यानी कितने हो गए, 700। 6300 वाला द्रव्य 700 में बांट देंगे तो 9-9 आ गए। अभी वो भागहार का आधा करना है, हाँ 6300/18 करना है और उसमें 6300 बांट देना है तो फिर 18 आएंगे, डबल आ जाएगा उसका। तो दो दो अंतिम निषेक का अर्थ होते 18 आएंगे, किंतु मात्र दो अंतिम निषेकों के द्वारा कर्म स्थिति के द्वितीय समय का संचय नहीं होता, क्योंकि वह चरम और द्विचरम निषेक प्रमाण है। क्या कहते हैं, अब एक समय प्रबद्ध की कर्म स्थिति के प्रथम समय प्रबद्ध के बांधे हुए द्रव्य की अपेक्षा से अंतिम समय में कितना है द्रव्य, तो 9 है। जो समय प्रबद्ध दूसरे समय में बांधा है उसकी भी इसी तरह से निषेक रचना हुई है, तो उसका भी वहां होगा ना, उसका अंतिम निषेक 9वां होगा, परंतु उसके अंतिम दो निषेक अभी उसकी अपेक्षा से बता रहे हैं, तो उसके अंतिम निषेक 9 और 10, चरम और द्विचरम ऐसे 2 हो जाएंगे। अभी यहां दूसरे समय में बंधा हुआ है, देखो यहाँ क्या कहते हैं, हाँ वो तो अभी समझाने के लिए तो उतने कहेंगे ना। देखो नीचे से पांचवी लाइन, किंतु मात्र दो अंतिम निषेकों के द्वारा कर्म स्थिति के द्वितीय समय का संचय नहीं होता, क्योंकि वह चरम और द्विचरम निषेक प्रमाण है। द्वितीय समय में बंधे हुए का संचय कितना है, इस पोजीशन पर द्वितीय समय में बंधे हुए के दो निषेक बाकी है, उसका संचय पूछा है, 9 और 10 मिलकर 19 हो जाएगी। इस कारण दोनों अंतिम निषेकों के ऊपर जिस प्रकार एक गोपुच्छ विशेष अधिक होवे, उस प्रकार अवहार काल की परिहानि की जाती है। अवहार काल ने जो भागहार है, भागहार जो अंतिम निषेक के लिए बताया था, अब यहाँ 19 हो जाएगी ना, तो भागहार कुछ उसमें परिहानि करते। देखो, नीचे एक अधिक गुणहानि को जितने स्थान आगे के विवक्षित हो उनसे गुणित करके जो लब्ध आवे, उसे जितने स्थान का भागहार लाना है, एक कम उनके संकलन का भाग देने पर जो लब्ध हो उसका विरलन करके एक अंक के ऊपर रखी हुई राशि को समखंड कर देने पर विरलन के प्रत्येक एक के प्रति एक एक गोपुच्छ विशेष प्राप्त होता है। यहाँ कच्चे उनको निकालना है। इसको उदाहरण में देखेंगे, फिर दोबारा वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ एक विशेष को ग्रहण कर उपरी विरलन के द्वितीय अंक के प्रति प्राप्त राशि के ऊपर देने पर चरम और द्विचरम निषेकों का प्रमाण कर्मस्थिति के द्वितीय समय संबंधी संचय के तुल्य होता है। इसी प्रकार शेष विशेषों को भी उपरिम विरलन अंकों के ऊपर देकर समीकरण करके तीन अंकों को उत्पन्न कराना चाहिए। यथा अभी इसको बता रहे, एक अधिक गुणहानि को दूना कर, एक अधिक गुणहानि, गुणहानि अपनी आठ की है, एक अधिक गुणहानि, एक अधिक आठ नौ हो जाएगी, उसको दूना कर यानी नौ को दो गुणा कर 18 हो जाएगी। उससे एक कम गुणकार के संकलन को अपवर्तित करके जो लब्ध आवे उसे एक अधिक करने से यदि एक अंक की हानि प्राप्ति होती है तो ऊपरी मिरलन में कितनी हानि प्राप्ति होगी। इस प्रकार फल राशि से गुणित इच्छा राशि को प्रमाण राशि से अपवर्तित करने पर परिहीन अंक प्राप्त होते हैं। वो भागहार कितना कम करना है उसकी बात चल रही है। पुनः उनको उक्त राशि में से घटाने पर भागहार प्राप्त होता है। इसका समय प्रबद्ध में भाग देने पर चरम और द्विचरम निषेकों का प्रमाण होता है। अब ये जो हमने पढ़ा उसी को दोबारा पढ़ेंगे। पहले हमने क्या किया था, पहले चरम निषेक की तो बात हुई थी, उसका भागहार 6300/9 आया था। अब यहाँ कहते हैं पूर्व भागहार 6300/9 यानी 700 हुआ था। ये पूर्व भागहार था, 6300/9 ये पूर्व भागहार था, उसका अर्ध भाग 700 का अर्ध भाग 350 आए। 350 कैसे निकाला, 6300/9 700 आया, उसका अर्ध भाग 350 आया। गुणहानि अपनी 8 है, चरित अधवान 2, दो निषेक है ना वहां पर, अंतिम दो निषेक है। एक कम चरित अधवान 1 हुआ, और एक का संकलन कितना होता है, एक ही होता है। अब कहते हैं 6300/350=18, जो दो अंतिम निषेक की संख्या है, दो अंतिम निषेक है उसमें, 8+1=9 हो गए, वो संकलन उसमें मिला दिया और उसको डबल किया 18 हो गए। तो 18 को 1 से भाग दिया तो 18 तो अपनी यहाँ विरलन राशि आ गई। अंतिम निषेक की संख्या तो 19 होने वाली है। अब इसका विरलन कर देना, एक 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 से 18 इसका विरलन कर देना, ऊपर का पढ़ना पड़ेगा। तो उसके हरेक के प्रति अगर उसको दे देंगे तो गोपुच्छ विशेष वहां का प्राप्त होगा, वो हम बताए ना। देखो ये यथा लिखा है, उसमें से फिर पढ़ेंगे तभी आगे क्या कहना चाहते हैं वो हमें ख्याल में आएगा। नीचे से छठी लाइन यथा जहाँ लिखा है, देखो एक अधिक गुनहानी न होगे उसको दुना कर 18 हो गए, उससे एक कम गुणकार के संकलन को अपवर्तित करके जो लब्ध आवे उसे एक अधिक करने से यदि एक अंक की हानि प्राप्ति होती है तो ऊपरी विरलन में कितने प्राप्ति होगी। इस प्रकार फरल राशि से गुणित इच्छा राशि को प्रमाण राशि से परिहीन अंक प्राप्त होते हैं और उसको उक्त राशि में घटाने पर भागार प्राप्त होता है। देखो यहाँ 300 अभी नीचे आते 350 को 19 से भाग दिया उन्होंने, 350 बाय 19 आ गए और वो 350 में से उन्होंने माइनस कर दिया, परिहीन राशि मिला नहीं है ना हमको, तो जाता है 331 पुनः 11/19। ये चरम द्विचरम निषेक प्राप्त करने का भागहार है, ये हमको 19 प्राप्त करने हैं, उसके लिए इस भागहार से अगर हम भाग देंगे 6300 को तो 19 संख्या प्राप्त हो जाएगी। यही बात है, ये अपूर्णांक पूर्णांक में लिखा है, उसको सरल करके लिखेंगे हम तो 6300/19 आते हैं, तो 63 को 63/19 से भाग देंगे तो 19 आते हैं, वो चरम और द्विचरम निषेक आते हैं, अंतिम दो निषेकों की टोटल। इस प्रकार एक अधिक गुणहानि की आगे के जितने स्थान विवक्षित हो उनसे गुणित कर आगे के जितने स्थान विवक्षित हो उनकी एक कम संकलना से अपवर्तित करके जो प्राप्त हो उसमें एक मिलाकर इससे फलगुणित इच्छा को अपवर्तित कर परिहीन रूपों की उत्पत्ति सर्वत्र कहना चाहिए। कितना उसमें कम करना है उसका यहाँ रूप आएगा। या दूसरी पद्धति अब बताते, एक तो बता दिया कि उसमें भागार को ही आधा करना है और उसमें एक एक बढ़ा दिया उन्होंने 19/18 के बड़े 19 हो गया। अब यहाँ कहते दो अधिक निषेक भागार, निषेक भागार ने दो गुणहानि, दो अधिक निषेक भागार ने 18 हो जाते डायरेक्ट, यानी 2+16 होते 18 हो जाएंगे, उसको एक कम करके आगे के जितने स्थान विवक्षित हो उनसे अपवर्तित कर जो प्राप्त हो उसमें एक मिलाकर उससे फलगुणित इच्छा के भाजित करने पर परिहीन अंक प्राप्त होते हैं। देखो निषेक भागार है 16, दो अधिक किया ना, दो अधिक किया तो 18 हो गया। अब आगे के कितने स्थान विवक्षित हैं तो आगे का एक और लेना है तो उससे अपवर्तित किया, भाग दिया तो जितना आया उसमें एक मिलाया, 19 आ गए। अब जो अपना ओरिजिनल भागार था 350 उसको इस डायरेक्ट 1900 भाग दे और वो मूल 350 जो अपना भागार था वहां का उसमें से माइनस कर दिया तो यहाँ वाला ये नया भागार आ गया। ये इसकी संख्या 6300/19 है। अथवा और एक पद्धति बताते हैं, एक कम आगे के जितने स्थान विवक्षित हो उनके अर्ध भाग से एक अधिक गुणकार को भाजित कर गुणहानि को, सॉरी फिर पढ़ती हूँ। एक कम आगे के जितने स्थान विवक्षित हो, ये दूसरे आगे दो स्थान है ना, उसमें से एक कम कर दिया तो एक रह गया, उनके अर्धभाग से एक का अर्धभाग यानी आधा, एक अधिक गुणहानि को भाजित कर, एक अधिक गुणहानि यानी नौ, नौ को अभी हमने आधे से भाग दिया, आधे से भाग दिया यानी दो से गुणा किया है ना, वन हाफ से भाग दिया नौ को यानी नौ दो से गुणित किया, ऐसे हो जाता है तो अठारह हो गए। उससे फलगुणित इच्छा को भाजित करने पर परिहीन रूप प्राप्त होते हैं, तो 350 वाला अपना जो भाग आ रहा है, मूल भाग आ रहा है, आधा का हमने क्या था, हमने उसको भाग दिया तो 350 बटे 19 आते हैं, वो 350 में से परिहीन करना है यानी माइनस करना, घटा देना, तो वही संख्या आती है। इसे उन्होंने तीन अलग अलग मेथड्स बताए, और भी एक बता रहे क्या, अथवा एक अधिक गुणहानि से अंतिम निषेक के भागहार को गुणित करके, एक अधिक गुणहानि यानी नौ, अंतिम निषेक का भागहार जो है कितना है, 6300 वाय के लिए नौ यानी 700, तो एक अधिक गुणहानि से यानी नौ से अंतिम निषेक के भागहार को गुणित करके यानी 700 को गुणित करके विरलन कर, समय प्रबद्ध को समखंड कर देने पर 700 को 9 से गुणा करेंगे तो 6300 आ गए, और उसमें उसका विरलन किया तो एक 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 6300 बार लिखा, और उसमें 6300 द्रव्य विरलन करके दिया तो एक एक आ गया। विरलन के प्रत्येक एक के प्रति एक एक गोपुच्छ विशेष प्राप्त होता है, वहां के गुणहानि का अंतिम गुणहानि का वो चय आ गया, एक आ गया। ऐसा समझकर आगे के जितने स्थान विवक्षित हो उनसे एक अधिक गुणहानि को गुणित करने पर जो प्राप्त हो उसमें ही आगे के जितने स्थान विवक्षित हो उनके एक कम संकलन को मिलाकर पूर्व विरलन के अपवर्तित करने पर इच्छित समय प्रबद्ध के संचय का भागहार होता है। हमें आगे कितने निषेक लेना है उसकी बात यहाँ करते हैं। हमने 9 से शुरू किए ना, तो उसके सेकंड जो निषेक है वो 10 होगा, एक बढ़ गया उसमें चय, दूसरे जाएंगे तो दो चय बढ़े यानी टोटल कितने बढ़े, 2+1 3 बढ़े, इसलिए 2 का संकलन धन कहा उन्होंने। यह 9+10+11 ऐसी संख्या होगी वहां पर। उदाहरण बता रहे यहाँ पर, अंतिम निषेक भागहार, निषेक भागहार निषेक का भागहार, निषेक भागहार वो 16 वाला नहीं लेना, ये 700 है, गुणहानि है 8, चरित अध्वान है 2, 8 में 1 मिला है 9 आ गए, 700 को 9 से गुणा किया 6300 आ गए। आठ में एक मिलाकर हमने देखा था, उसको दो गुणा किया तो 18 आ गए, 18 और 1 19 हो गए, 6300 को 1900 भाग देते हैं तो इच्छित भागहार, ये नया भागहार वहां का आ गया, अंतिम चरम और द्विचरम निषेक के लिए ये नया भागहार है। इस तरह हाँ, चौथे के लिए कितने, अभी एक एक गोपुच्छ है तो चौथे स्थान पर कितने बार मिलाया, 3 बार मिलाया ना, चौथे निषेक के लिए 3 बार मिलाया, तो 3 बार मिलाया ने कितने हुआ वहां का, 3 का संकलन धन कितना होगा, 6 होगा, तो 9 में 6 मिलाने पर उतना चौथा निषेक आ जाएगा। इस तरह से निकालना है, परंतु हमारे यहाँ गुणहानि 8 की और एक एक में तो एक एक बढ़ेगा, 16 तक तो आने ही वाला है इसे। हाँ आप तो ऐसा करना पड़े, 9 + 10 + 11 + 12 इस तरह से ये करने की अलग अलग विधि उन्होंने बताया, भागहार निकालने की अलग अलग पद्धति है। उतने की टोटल करो और पूरे द्रव्य को भाग दो, वही भाग आने वाला है। अंतिम दो निशेकों की टोटल कितनी होगी? अभी अपने ये 121 पेज निकालना, 121 वाला पेज, अंतिम दो निशेक 9 और 10 19 हो जाते हैं। तो वहां का भागहार कितना होगा? 6300 / 19। अभी उनकी अलग अलग विधि हम अलग रखते थोड़ी। अंतिम तीन निशेकों का मिलकर संचय कितना होगा? 9 + 10 + 11 30। तो यहाँ का भागार कितना होता है? 6300 / 30। हाँ, इस तरह से एक एक निशेक बढ़ते हुए उसका भागार भी बदलेगा, ये बात बताना चाहते हैं। कहते हैं इस तरह चार प्रकार से, उसके लिए उन्होंने चार प्रकार बताए, चार प्रकार से एक समय प्रबद्ध के संचय का भागार सिद्ध करना चाहिए। अब द्वितीय समय प्रबद्ध के संचय के भागहार की संदृष्टि 6300 / 19। अब तीन समय आगे जाकर बांधे समय प्रबद्ध के संचय के भागहार को लाते समय अंतिम निषेक के भागहार के त्रिभाग का विरलन करके, अंतिम निषेक भागहार हमने 700 देखा था, और उसका त्रिभाग है 700/3, उसका विरलन करके समय प्रबद्ध को समखंड कर देने पर विरलन प्रत्येक एक के प्रति तीन तीन अंतिम निषेक प्राप्त होते हैं। अभी हमने देखा था ना, कितने 30 देखे थे अभी हमने, 9 + 10 + 11 30 थी। पश्चात उसके नीचे आगे के जितने स्थान विवक्षित हो एक कम उनसे भाजित एक अधिक गुणहानि के दूने को विरलन करके उपरिम विरलन के प्रत्येक एक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड कर देने पर प्रत्येक एक के प्रति एक कम आगे के जितने स्थान विवक्षित हो उनके संकलन मात्र गोपुच्छ विशेष प्राप्त होते हैं। अभी यही बात है ना, आपने यही पूछी थी, चौथे में एक कम करना, तो तीन आगे गए हम, तो तीन का संकलन धन जितना होगा उतने गोपुच्छ उसमें मिला देना, तो चौथा स्थान है तो तीन का संकलन धन कितना है? तो 1 + 2 + 3 उतने गोपुच्छ, यहाँ का गोपुच्छ विशेष एक है, हाँ उसमें मिला देना। मूल भागार से वो भागार अलग अलग होगी ना, वहां के भागार, ये भागार हम नीचे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे संख्या ज्यादा है भागार कम हो रहा है, भागार आधा हो जाएगा नीचे नीचे। चय डबल होगा वहां का चय भी डबल हो जाएगा। देखो यहाँ आए हम, उतने गोपुच्छ विशेष प्राप्त होते हैं, 3 3 6 2 8 सातवीं लाइन में नहीं है, 3 3 6 और 7वीं लाइन चल रही है, उनको उपरिम विरलन पर धरे हुए तीन अंतिम निषेकों में मिलाने पर इच्छित संचय का प्रमाण प्राप्त होता है। तीन पर धरे है ना, वहां तो एक एक निषेक का प्रमाण हमने 9-9 आया था, 9-9 में ये गोपुच्छ विशेषों का संचय मिला दिया हमने, उसका संकलन, तो गोपुच्छ विशेष एक है और उसका संकलन हमने, इतने संकलन लेना, कितने? तीन का संकलन, तीन का संकलन आता है 6 छः बार एक एक लेना है, नहीं छः लेना, उसमें ओरिजिनल नौ 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 में उसमें मिला देना। तथा एक अधिक अदस्तन विरलन मात्र स्थान जाकर एक अंक की हानि भी पाई जाती है। इस प्रकार समीकरण करने पर कम हुए अंक का प्रमाण कहते हैं। ये भागहार में कितना कम हो जाएगा उसके लिए वो विरलन में से कम कर देंगे, जैसे हम हमेशा करते आए, इतने स्थान जाने पर एक की अंत हानि होती है। एक अधिक अदस्तन विरलन मात्र स्थान जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो उपरिम विरलन में कितने अंकों की हानि पाई जाएगी। इस प्रकार फलगुणित इच्छा को प्रमाण से अपवर्तित करने पर परिहीन अंक प्राप्त होते, परिहीन अंक यानी उसमें से कितने घटाए जाना है उसकी संख्या मिलेगी। पूर्व के समान इनको उक्त चारों प्रकारों से लाकर, चार अलग अलग विधियां बताई ना लाने की, तो कहते चारों प्रकार से लाना, उपरिम विरलन में से घटा देने पर इच्छित संचय का भागार होता है वो 6300/30। इसका समय प्रबद्ध में भाग देने पर इच्छित द्रव्य होता है, यानी अंतिम तीन निषेकों का द्रव्य, उसको संचय कहा है। इस प्रकार व्यामोह से रहित होकर सर्वत्र चार प्रकार से भागहार सिद्ध करना चाहिए। कंटाला मत करना कहते हैं। अभी उसी को फिर उदाहरण के द्वारा बताएंगे। देखो अंतिम निषेक का भागहार उन्होंने पहले से सिद्ध किया, 6300/9 दैट कम्स टू 700। चरित अद्वान तीन, चौथा निषेक है तो चरित कितना हुआ, तीन बार चढ़ा ना। हाँ। तो हमने देखा था कि तीन बार चढ़ा तो वो भागहार को तीन से भाग देना है, तो 63 को वो जो तीन का भाग देंगे तो तीन अंतिम निषेक आ जाएंगे नौ के हिसाब से। देखो क्या करना है, 700/9 जो है, नहीं 700/3 इसका विरलन करना और उसमें 6300/ करना इक्वली। हाँ। तो तीन में कितने आ जाएंगे, 27 आ जाएंगे, 9, 9 और 9। अब इसमें वो गोपुच्छ विशेष है उसमें ऐड करने पड़ेंगे, और तो तीन में से एक गया दो रह गए। हाँ तो 8+1 9 हो गए, 9 को 2 गुना के 18 हुए और 18 को भाग दिया 2 से तो 9 हो गए। 27 को 9 से भाग देने पर 3 हुआ, वो चरित अध्वान के संकलन मात्र गोपुच्छ विशेष। अच्छा ये तीसरा है उसकी बात चल रही, चौथे की नहीं। तो मूल हमने 9 9 9 तीन बार लिए थे, ये तीसरे निषेक की बात कर रहे हैं। तो तीन बार लिए और उसमें एक्स्ट्रा जो 6 कितने बार बढ़ा, 2 बार बढ़ा, तो 2 का संकलन धन उसमें मिलाना, 2 का संकलन धन 1+2 3 होते हैं। तीन बार 6 एक है, तीन बार 6 लिए तो भी एक तीन ही रह गए, तो वो 27 जो ओरिजिनल वैल्यू 9 9 की ली उसमें 6 मिला दिए, 6 की टोटल हो तो ये 30 हो गए। तो यहाँ तीनों निषेकों की टोटल हो जाएगी 30 और उनका भागहार कितना होगा, 6300/30। अब एक आदि उत्तरोत्तर एक अधिक क्रम से बढ़ते हुए, अभी चौथे की बात करेंगे, पांचवे की बात करेंगे, गुणहानि तक ऐसे ही बढ़ते हुए कितने स्थान जाकर एक अधिक गुणहानि मात्र गोपुच्छ विशेष होते हैं, जिससे एक अधिक आगे के विवक्षित स्थानों से अंतिम निषेक के भागहार की अपवर्तना की जाती है। कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर गुणहानि के अर्ध भाग के वर्गमूल से द्विगुणित कर एक अधिक आगे जाने पर उक्त गोपुच्छ विशेष एक अधिक गुणहानि मात्र होते हैं। देखो यह संदृष्टि के द्वारा समझाया है। गुणहानि का प्रमाण संदृष्टि में 512 है। ये समझाने के लिए अलग संदृष्टि लिया, हमारी हमेशा की गुणहानि जो होती है 8 की वो यहाँ नहीं ली है। गुणहानि का प्रमाण ही 512 लिया। गुणहानि का आधा होता है 256, वहाँ क्या लिखा, अर्ध भाग के वर्गमूल, 256 का वर्गमूल हो जाएगा 16। वर्गमूल से द्विगुणित कर एक अधिक आगे जाने पर उक्त गोपुच्छ विशेष एक अधिक गुणहानि मात्र होते हैं, तो उसके डबल कर दे तो 32 हो गए। गुणहानि के अर्ध भाग का वर्गमूल अनवस्थित भागहार है, क्योंकि यह अवस्थित नहीं पाया जाता है। प्रथम रूप के उत्पन्न कराते समय यह असंख्यात पल्योपम के द्वितीय वर्गमूल प्रमाण होता है, क्योंकि सब गुणहानियां असंख्यात पल्योपम के प्रथम वर्गमूलों के बराबर हैं। आगे वह एक रूप प्राप्त होने तक क्षीण होता हुआ चला जाता है। इस संदृष्टि का अर्थ कहते हैं, अभी इसका अर्थ समझाएंगे हमें। यथा अनवस्थित भागहार का गुणहानि के प्रमाण में भाग देने पर भागहार से दुगुणा आता है, ये 32। इस लब्ध में एक मिलाने पर जो प्रमाण हो उतना आगे जाकर बांधे हुए समय प्रबद्ध के संचय का भागहार एक अधिक जितने स्थान आगे गए हो उससे अंतिम निषेक के भागहार को भाजित करने पर उनमें एक खंड के बराबर होता है। ये तो कुछ खास मेरे भी समझ में नहीं आया, यानी कितने आगे हम उत्तरोत्तर हीन होते हुए कितने आगे जाने पर ये बात प्राप्त होती है। बात है हमारी तो गुणहानि 8 की ही है, तो यहाँ तो ये नहीं घटित होगा, परंतु मूल में वो असंख्यात में होते हैं, इसलिए ये सारा गणित का उन्होंने समझाने की कोशिश की है। शंकाकार पूछता है वह कैसे जाना जाता है, इस शंका का उत्तर कहते हैं। यहाँ अंतिम निषेक प्रमाण विस्तार वाले और जितने स्थान आगे गए हैं उतने आयाम वाले क्षेत्र को छील कर, अभी एक क्षेत्र की अपेक्षा बताएंगे, विस्तार कितना है, अंतिम निषेक प्रमाण 9 के प्रमाण में लिया और जितने स्थान आगे गए हैं उतने आयाम वाले क्षेत्र को छील कर अलग रखने पर उसमें जितने स्थान आगे गए हैं उतने अंतिम निषेक प्राप्त होते हैं। अभी उन्होंने पता है ना वो 32 हो गया था, वो तो 33 हो गए, अंतिम निषेक उतने हो गए। ये अपनी गुणहानि के कंपेयर मत करना, हमारी पूरी टोटल स्थितियां ही वो 48 थी, उसकी बात यहाँ नहीं लाना है। पुनः निकाले हुए शेष क्षेत्र को इस प्रकार संदृष्टि मूल में देखिए स्थापित कर बीच में फाड़ कर और उल्टा कर दूसरे क्षेत्र के पार्श्व भाग में मिला देने पर एक का आधा अधिक गुणहानि के अर्ध भाग के वर्गमूल प्रमाण विष्कम्भ होता है। गुणहानि का अर्ध भाग का वर्गमूल, यानी अभी हमने गुणहानि कितने की मानी थी, 512 की, उसके आधे भाग का वर्गमूल होता है 16 प्रमाण विष्कम्भ होता है। ये बीच में फाड़ा उसको, देखो 32/1 था, नहीं ऐसा 32 था, हाँ 9:37 से निकाले हुए शेष इस प्रकार सामग्री बीच में से फाड़ कर, ये बीच में से फाड़ा तो 16-16 के दो हुए और आयाम एक कम जितने स्थान आगे गए हैं उतना होता है। फिर अनवस्थित भागार रूप विष्कम्भ से लब्ध मात्र आयाम के गुणित करने पर गुणहानि मात्र गोपुच्छ विशेष होते हैं। गोपुच्छ विशेष कितने हो गए, तो गुणहानि 512 की मान ली थी उतने गोपुच्छ विशेष हो जाएंगे। पुनः उन बचे हुए अनवस्थित भागार मात्र गोपुच्छ विशेषों में से एक गोपुच्छ विशेष ग्रहण कर मिला देने पर अंतिम निषेक उत्पन्न होता है। उसको पूर्व निषेकों में मिलाने पर एक अधिक जितने स्थान आगे गए हैं उतने अंतिम निषेक होते हैं। पुनः इन अंतिम निषेकों की शलाकाओं से अंतिम निषेक के भागार को अपवर्तित कर उपस्थित गोपुच्छ विशेषों के लाने के लिए कुछ कम करने पर इच्छित भागार होता है। ये अनवस्थित भागार है, वो फिक्स भागार नहीं है, उसकी बात चल रही है यहाँ पर। अब यहाँ अर्थ प्ररूपणा करते हैं। अभी हम इसको तो पढ़ ही रहे, अभी ये उसकी संदृष्टि अपनी संदृष्टि बराबर ठीक नहीं बैठ रहा है। मेरे ख्याल से आज तो पढ़ेंगे, कल इसका अर्थ ख्याल में आएगा शायद, 24 घंटा अंदर रहेगा। पढ़ते हैं, यहाँ अर्थ प्ररूपणा करते हैं, वह इस प्रकार है। अनवस्थित भागहार का वर्ग करके दुगुणित कर गुणहानि में भाग देने पर प्रक्षेप रूप आते हैं। उसमें प्रक्षेप रूप है, उसमें कितने मिलाना है उसका रूप आता है। दुगुणित भागहार को प्रक्षेप रूपों से गुणित करने पर अधवान आता है। अब उत्पन्न हुए एक अधवान की पृथक प्ररूपणा करते हैं, यथा जिस अधवान में एक से लेकर उत्तरोत्तर एक अधिक वृद्धि को प्राप्त हुए गोपुच्छ विशेष सब मिलकर एक अधिक गुणहानि मात्र होते हैं, उसमें एक रूप उत्पन्न होता है। देखो क्या कहते हैं, अंतिम निषेक 9 का था, बराबर है, तो उसमें एक क्षय बढ़ा, दो क्षय बढ़े, तीन क्षय पड़े, ऐसे कितने क्षयों का एक निषेक होगा, कितने क्षयों के नयों का, 9 क्षय मिलाने चाहिए। 9 यानी एक अधिक गुणहानि प्रमाण क्षय मिलेंगे तो उसका एक पूरा निषेक हो जाएगा, उसमें एक रूप उत्पन्न होता है ना, एक संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पर एक अधिक गुणहानि 9 गोपुच्छ विशेषों के संकलन की संदृष्टि है। ये गोपुच्छ विशेषों का संकलन कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। देखो इसके लिए प्रश्न क्या पूछा था, इसको फिर देखते हैं। वो 512 बीच में समझाने के लिए उन्होंने बताया था, एक सौ 48 पृष्ठ पर नीचे का जो बड़ा पैराग्राफ है उसमें क्या पूछा था, वहां देखते थे उदाहरण के नीचे मिला। अब एक आदि उत्तरोत्तर, बड़ा पैराग्राफ, एक आदि यानी एक से शुरू करके, आदि उत्तरोत्तर यानी 1, 2, 3, 4, ऐसे क्रम से बढ़ते हुए कितने स्थान जाकर एक अधिक गुणहानि मात्र गोपुच्छ विशेष होते हैं, कितने स्थान आगे चाहेंगे तो चयों की टोटल कितनी होनी चाहिए, एक अधिक गुणहानि 9 होनी चाहिए। एक स्थान आगे जाएंगे तो एक चय बढ़ा, दो स्थान आगे गए, तीसरे स्थान पर गए तो दो चय बढ़े, परंतु संकलन धन चयों का 1+2 3 हो गया। तीसरे स्थान पर गए हम, आगे के तीसरे स्थान पर, तो 3 का संकलन धन कितना होता है, 6 हुआ, और चौथे में गए तो संकलन धन कितना होगा, दस होगा। तो इनका प्रश्न है संकलन धन की संख्या नौ आनी चाहिए। अब यहाँ हमारे फिगर सही से है कि अटपटे है वहाँ आए कि नहीं, परंतु मूल में तो असंख्यात है ना। तो एक अधिक गुणहानि मात्र चयों की टोटल होने के लिए कितने स्थान आगे जाने पड़ेंगे, वो बात यहाँ पूछ रहे हैं। प्रश्न ख्याल में, फिर दोबारा पढ़ेंगे। देखो अब 148 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। अब एक आदि उत्तरोत्तर एक अधिक क्रम से बढ़ते हुए कितने स्थान जाकर एक अधिक गुणहानि मात्र गोपुच्छ विशेष होते हैं, यानी नौ चय कब होंगे, कितने स्थान जाने पर उतने होंगे। वहां नौ स्थान जाने पर नौ चय बढ़ेंगे उसकी बात नहीं, चय धन कितना नौ कब होगा, वो संकलन का बढ़ना चाहिए जिससे एक अधिक आगे के विवक्षित स्थानों से अंतिम निषेक के भागार की अपवर्तना की जाती है। तो इतने बढ़ेंगे उसमें एक निषेक प्रमाण होगे तो भागार में वो डबल नहीं होगा, भागार में उसकी एक की कम ज्यादा जो कुछ होगा। देखो अभी यहां फिर आते हैं अपने 150 पृष्ठ पर। या उसके अंतिम देखे ना, दूसरे पैराग्राफ में अंत में यहाँ पर एक अधिक गुणहानि गोपुच्छ विशेषों के संकलन की संदृष्टि है, उसके संकलन की संदृष्टि 150 पृष्ठ पर आए हम। फिर पढ़ती हूँ दूसरा पैराग्राफ, यहाँ अर्थ प्ररूपणा करते हैं, मिला ना 150 पृष्ठ पर वो जहाँ नया पैराग्राफ शुरू हुआ है, वही इस प्रकार है। अनवस्थित भागहार का वर्ग करके दुगुणित कर गुणहानि में भाग देने पर प्रक्षेप रूप आते हैं, वो कितने उसमें मिलाना उसका रूप आता है। दुगुणित भागहार को प्रक्षेप रूपों से गुणित करने पर अधवान आता है। अब उत्पन्न हुए एक अधवान की पृथक प्ररूपणा करते हैं, जिस अधवान में एक से लेकर उत्तरोत्तर एक अधिक वृद्धि को प्राप्त हुए गोपुच्छ विशेष सब मिलकर एक अधिक गुणहानि मात्र होते हैं, उसमें एक रूप उत्पन्न होता है। यहाँ पर एक अधिक गुणहानि नौ ये गोपुच्छ विशेषों के संकलन की संदृष्टि है। अब उसके लिए यहाँ गाथा देते हैं। धनमठुत्तर गुणि दे विगुणादि उत्तरूणवगजुदे मूलं परिमूलूणं विगुणोत्तर भागिदे गच्छो परिमूलूणं। इसका अर्थ देखते हैं, धन को आठ से और फिर उत्तर से गुणा करके उसमें द्विगुणित आदि में से उत्तर को कम करके जो राशि प्राप्त हो उसके वर्ग को जोड़ दे, फिर इसके वर्गमूल में से पहले के प्रक्षेप के वर्गमूल को कम करके शेष रही राशि में द्विगुणित उत्तर का भाग देने पर गच्छ का प्रमाण आता है। अभी इस गाथा में जो गच्छ लाने की विधि बताई है, गच्छ ने वो कौन सा निषेक की बात चल रही ना, उसको यहाँ गच्छ कहेंगे। इस गाथा द्वारा गच्छ लाने की विधि कहनी चाहिए यथा। ऊपर क्या लिखा है, धन को आठ से और फिर उत्तर से गुणा करने पर, धन को आठ से गुणित करने पर संदृष्टि की अपेक्षा 72 आते हैं, नौ आठ है 72। इसे उत्तर से गुणा करने पर यही संख्या होती है, उत्तर यानी चय। हमने देखे थे चय के नाम, चय कहो प्रचय कहो उत्तर कहो, यही संख्या होती है, क्योंकि यहाँ उत्तर का प्रमाण एक है। ये समझे ना, चय का प्रमाण यहाँ पर एक है। आदि को दुना करके फिर उसमें से उत्तर को कम करके, आदि को गुणा किया दो, दो गुणा किया ना, दो आ गए, उसमें से उत्तर को यानी चय को कम करके एक आ गया। वर्गित कर मिलाने पर इतना, अर्थात वर्गित एक का वर्ग भी एक होता है, तो उसमें 72 में मिला देने पर 73 आ गए। इससे करणी शुद्ध वर्गमूल नहीं प्राप्त होता, ये पूर्णांकों में कुछ वर्गमूल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इसे इसी प्रकार रहने देना चाहिए। वो वर्गमूल 73 ऐसा कहेंगे हम, पहले के प्रक्षेप का वर्गमूल एक है, पहले की राशि यदि रूप अर्थात प्रत्येक हो तो उसमें से इसे घटा देना चाहिए, यानी पूर्णांकों में होगी तो उसको तो घटा सकते हैं, परंतु यह करणीगत है इसलिए इसे उसमें से नहीं घटाया जा सकता, अतएव इसे अलग स्थापित कर देना चाहिए। शोध्यमान अर्थात घटाने योग्य होने से इसकी ऋण संज्ञा है, ये हम कहेंगे ऋण इतनी है वहां पर, एक हमने वो उसमें से इसको घटा देंगे। फिर दुगुणे उत्तर का भाग ग्रहण करते समय करणीगत का करणीगत ही भागार होता है और रूपगत का रूपगत ही भागार होता है। इस नियम के अनुसार करणी में 4 से और रूपगत में 2 से भाग लेना चाहिए। यह एक अधिक गुणहानि मात्र संकलन का गच्छ है, यही एकाधिक करने पर आगे का स्थान होता है। हमने जो संख्या निकाली थी तो इन बिटवीन थी ना, उसमें भी 9 हमें संकलन धन मिलना चाहिए था। हाँ, तो हम तो 9 किसी का संकलन धन नहीं है, 4 का संकलन तो 10 होता है और 3 का संकलन धन हमने 6 देखा था, तो उसके इन बिटवीन ये कहीं पर उसका स्थान हम मानेंगे। अब इस गच्छ के आधार से एक अधिक गुणहानि मात्र गोपुच्छ विशेषों की उत्पत्ति का कथन करते हैं। यथा संकलन राशि में से छेद राशि, अभी यहाँ प्रश्न चिन्ह लगाया, ऊपर क्या है, आगे कुछ उनको समझ में नहीं है, ऊपर लिखा है संपदि एद, नीचे से तीसरी लाइन, एदम मादो गच्छादो रुवाह्य गुणहानि मित्त गोवुच्छ विशेषाणम उत्पत्ति उच्चदे समझा, ये यहाँ से लिख रहे हैं, संकलन राशिमी छेदो राशि धावया हिथि दो गच्छा ठवेदौवा। धावया हित्ती, धावया के बदले में म प्रतौ स्थावया, अक प्रतौ धावया इति पाठा, स्थापित करके हो सकता है, हित्ती दो गच्छा ठवे दौवा, दो गच्छ स्थापित करना चाहिए। उन्होंने दो बार लिखा वही राशि, एथ एक राशि रुवम पक्षीवीय अध्य दौवाती निरद्ध रुवम धन, क्या नीचे पड़ेंगे, देखो ये दो गच्छ उन्होंने स्थापित किए, ये जो उन्होंने जो संदृष्टि बताई ना ऊपर जो लिखी थी, देखो ये जो पूरी संदृष्टि है वो किसकी है, ऊपर जरा पढ़ना, ऊपर के पैराग्राफ में अंतिम लाइन, यह एक अधिक गुणहानि मात्र संकलन का गच्छ है, इतने स्थान आगे जाकर इतना वहां उसका इतना चयधन होगा, नीचे फिर पढ़ते हैं। ऐसे दो गच्छ स्थापित किए हमने, साइड बाय साइड यही संख्या लिखी दो बार। वहाँ इस राशि में एक मिलाकर आधी करनी चाहिए, एक एक मिलाकर आधा करना, इसलिए ऋण के एक बटे दो को धन धन रूप राशि में से घटाकर आधा करने पर इतना होता है। इससे गच्छ को दो प्रति राशि करके गुणा करने पर यह राशि उत्पन्न होती है। ये तो सब बाउंसी है। करणीगत का मेरे ख्याल से वो अपूर्णांकों में कुछ है ना, पूर्णांकों में उसका वर्गमूल नहीं आता है, करणीगत लिखा होगा। ये तो गाथा के आधार से ये बता रहे हैं ना, गच्छ का प्रमाण आना चाहिए। उसको कहा रूपगत और करणीगत, ऐसे दो बातें उन्होंने बताई। 151 पृष्ठ पर देखो, करणी शुद्ध वर्गमूल प्राप्त नहीं होता पहली लाइन में, इसलिए इसे इसी प्रकार रहने देना चाहिए। पहले के प्रक्षेप का वर्गमूल एक है, पहले की राशि यदि रूपगत अर्थात प्रत्येक हो तो उसमें से इसे घटा देना चाहिए, परंतु वह करणीगत है इसलिए इसे उसमें से नहीं घटाया जा सकता, इसलिए इसको अलग स्थापित कर देना चाहिए। ये एक के ऊपर उन्होंने प्लस लिख दिया। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, हम यही रुकेंगे अभी, कल इसको आगे देखेंगे। कल थोड़ा और इसमें से कुछ उजाला हो जाएगा तो देखेंगे। कल तारीख कितनी है?